ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। इसी मार्गशीर्ष 16 गते को होने जा रहे स्थानीय तह उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाने का सुरक्षा निकायों के प्रमुखों को गृहमंत्री रमेश लेखक ने किया निर्देश। भक्तपुर कैंसर अस्पताल 14 साल के कम उम्र के बच्चों के कैंसर का करेगा निःशुल्क इलाज। एक महीने के भीतर सभी प्रकार के औषधि का मूल्य समायोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल का कथन। डडेलधुरा के लिपना में जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई 2 की मौत, 7 घायल। और हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को 10 साल तक की सुनाई सजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि नेपाल संबद्ध नेपाल का राष्ट्रीय एवं मौलिक संबद्ध है। शंखधर साखुआ को राष्ट्रीय विभूति घोषित किए गए रजत वर्ष के अवसर पर आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि नेपाल संबद्ध सभी नेपाली की गौरवपूर्ण राष्ट्रीय संपदा है। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश नेपाल की सांस्कृतिक विविधता को एकता के सूत्र में जोड़े रखने में भी नेपाल संबद्ध की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में मालदीव में आयोजित 15वीं फिजिकल फिटनेस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले एथलीटों को सम्मानित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री निवास पर अलग अलग भार वर्ग में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले रूपेश शाही, प्रज्वल शाक्य, रजनी शाक्य और सोनाम मुलगुठी को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि चूंकि एक खेल के रूप में शारीरिक फिटनेस विकसित करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं, इसलिए राज्य की ओर से इस खेल के विस्तार को सरकार प्रोत्साहित करेगी। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि मार्गशीर्ष 16 गते को होने वाले स्थानीय तह उपचुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित वातावरण में संपन्न करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। धनगढ़ी में आज सुदूर पश्चिम प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री लेखक ने यह बात कही। उन्होंने उपचुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यक तैयारी कराने का सुरक्षा निकाय प्रमुख को निर्देश किया। गृहमंत्री लेखक ने सुरक्षा और शांति को कायम रखने व अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ने का निर्देश किया और कहा कि इसके लिए संबंधित सभी के बीच समन्वय जरूरी है। उन्होंने बताया कि नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल संबंधी नया कानून बनकर उनके संसद में पेश होने की तैयारी अंतिम चरण में है। निर्वाचन आयोग ने मार्गशीर्ष 16 गते को होने वाले स्थानीय तय उपचुनाव के लिए कॉल सेंटर संचालित किया है। मतदाताओं के प्रश्न, शिकायत और समस्या का समाधान कर मतदाता नामावली, निर्वाचन कार्यक्रम, उम्मीदवारी पंजीकरण, मतदान प्रक्रिया लगायत विषय में मतदाताओं को जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से कॉल सेंटर संचालित किया गया है। ये जानकारी आयोग की प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नेपाल के लिए ऑस्ट्रेलिया के राजदूत लीन जॉनस्टन ने आज दोपहर शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उनके बीच नेपाल ऑस्ट्रेलिया संबंध के साथ ही आपसी हित लगात विषय पर विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय ने दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विश्वसनीय आयोग गठित कर शांति प्रक्रिया का जल्द निराकरण करने का सरकार से अनुरोध किया है। साथ ही आयोग ने पीड़ितों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हुए अपनी पिछली सिफारिश को क्रियान्वयन करने और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास और मान्यता के तहत शांति प्रक्रिया का निराकरण करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि एक महीने के भीतर में सभी तरह की दवा की मूल्य का समायोजन किया जाएगा। आज पर्वत अस्पताल निरीक्षण करने के दौरान मंत्री पौडेल ने कहा कि औषधि, फार्मेसी व्यवसायी और कंपनी से हो रहे मानामनी अंत करने के लिए मूल्य समायोजन किया जा रहा है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14#डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। भक्तपुर कैंसर अस्पताल ने 14 साल से नीचे के बच्चों के लिए कैंसर का इलाज निशुल्क शुरू किया है। अस्पताल ने इसी मार्गशीर्ष 2 गति से 14 साल से नीचे के बच्चों को कैंसर रोग के संपूर्ण इलाज निशुल्क देने की शुरुआत की है। ये जानकारी अस्पताल के निमित्त कार्यकारी निदेशक डॉ उज्ज्वल चालीसे ने दी। बीते आश्विन 11 और 12 गति देशभर हुई अविरल बारिश के कारण आई बाढ़ व भूस्खलन से ऊर्जा और सिंचाई क्षेत्र में 13 अरब रुपए से अधिक की क्षति हुई है। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के मंत्रिपरिषद निर्णय से आश्विन 14 गति गठित समिति द्वारा आज ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का को सौंपे गए रिपोर्ट के मुताबिक बीते आश्विन 11 और 12 गति देशभर हुई अविरल बारिश के कारण आई बाढ़ व भूस्खलन से ऊर्जा और सिंचाई क्षेत्र में 13 अरब रुपए से अधिक की क्षति हुई है। डडेलधुरा में जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। कंचनपुर की दैजी से परशुराम नगर पालिका की ओर जा रही जीप परशुराम नगर पालिका वार्ड नंबर 9 स्थित दैजी जोगबुड़ा सड़क खंड लीपना में आज दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 महिलाओं की मौत हुई है। इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुड़ा के अनुसार जीप सड़क से 50 मीटर नीचे खाई में गिरी थी। दुर्घटना में अन्य 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई को सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो सीआईबी के मुताबिक उन्हें साइबर अपराध के आरोप में हिरासत में लिया गया है। प्रसाई को भक्तपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। प्रसाई की वीर अस्पताल में जांच की गई और आगे की जांच के लिए साइबर ब्यूरो भेज दिया गया है। जर्मनी नेपाल को 1 करोड़ यूरो करीब 1 अरब 46 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता देने जा रहा है। अर्थ मंत्रालय में आज एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान नेपाल के लिए जर्मन राजदूत डॉ थॉमस प्रिंज और अर्थ मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय तथा सहयोग महाशाखा के संयुक्त सचिव धनीराम शर्मा के बीच एक अनुदान समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए। नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केंद्र नार्क और सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था रेडियो नेपाल के बीच कृषि मौसम सलाह बुलेटिन कार्यक्रम प्रसारण करने के विषय में समझौता हुआ है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था रेडियो नेपाल सिंह दरबार में आज रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक अमर ध्वज लामा और नार्क के कार्यालय प्रमुख काली प्रसाद उपाध्याय ने कार्यक्रम प्रसारण संबंधी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक लामा ने कहा कि रेडियो नेपाल द्वारा प्रसारित कृषि एवं मौसम संबंधी कार्यक्रम कृषि पर निर्भर नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को 10 साल तक की सजा सुनाई है। लोकतंत्र समर्थक ये कार्यकर्ता विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ है। अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता बेनिताई को 10 साल की और जोशुआ वोग को 4 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। अदालत ने 47 कार्यकर्ताओं, विपक्षी सांसदों और आम लोगों में से अधिकतर को तोड़फोड़ करने की साजिश रचने का दोषी पाया है। अमेरिका ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं चीन और हांगकांग ने कहा है कि ये कानून और स्थिरता के लिए जरूरी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इसी मार्गशीर्ष 16 गति को होने जा रहे स्थानीय तय उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाने का सुरक्षा निकायों के प्रमुखों को गृहमंत्री रमेश लेखक ने किया निर्देश। भक्तपुर कैंसर अस्पताल 14 साल से कम उम्र के बच्चों के कैंसर का करेगा निःशुल्क इलाज। 1 महीने के भीतर सभी प्रकार के औषधि का मूल्य समायोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल का कथन। डडेलधुरा के लीपना में जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई 2 लोगों की मौत, 7 घायल। हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को 10 साल तक की सजा सुनाई। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।